नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच, न केवलं मे भवतश्च राजन् शवई बलं बलिनां चापरेषां परे वरे मे स्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। श्री प्रह्लाद उवाच। प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया, नहीं केवलम केवल मैं मेरा भवता आपका च तथा राजन हे महान राजा स व वही निसंदेह बलम बल बलिनाम बलवानों के च तथा अपरेशाम अन्यों का परे सम्माननीय अवरे अधीन अमी वे स्थिर जंगमा चल या चल जीव जे जो ब्रह्मादय ब्रह्मा इत्यादि जेना जिसके द्वारा बसम बस में प्रणीता लाया गया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रह्लाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप जिस पल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं वही आपके पल का भी स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के पलों का मूल स्रोत एक ही है, वह न केवल आपका या मेरा बल है अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, ऊंच हो या नीच। ब्रह्मा समेत सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 10:41 में, जद जद विभूति मत सत्वम श्रीमद मूर्जित में वा तद्देवाव गच्छ त्वम मम तेजो अंश संभव। जान लो कि सारी सुंदर यशस्वी तथा शक्तिशाली शक्तियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग से प्रकट होती है। प्रहलाद द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई मनुष्य कहीं कोई अद्वितीय बल या शक्ति देखता है तो अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत हुई है। उदाहरणार्थ, अग्नि की कई कोटियां हैं किंतु वे सभी सूर्य से उष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार सारे जीव चाहे बड़े हों या छोटे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया पर निर्भर है। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह उनकी शरण में जाए, क्योंकि वह दास है और कभी भी स्वामी का स्वतंत्र पद प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य स्वामी का पद स्वामी की दया से ही प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तक कोई इस दर्शन को समझ नहीं लेता तब तक वह मूढ़ बना रहता है। दूसरे शब्दों में, वह बुद्धिमान नहीं होता। जिन मूढ़ों या गधों में बुद्धि नहीं होती वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरण में नहीं जा सकते। जीव की अधीन अवस्था समझने में लाखों जन्म लग जाते हैं, किंतु जब कोई वास्तव में विज्ञ हो जाता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरण में जाता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो जीव वास्तव में ज्ञानी होता है वह अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज महात्मा थे, अतः उन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भगवान के विषय में सोचने और बोलने का मौका दिया। इस सौहार्द के लिए कृतज्ञता रूप में मैं श्री भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मति अपनी कृपा से अपने चरणों में लगाएं। तो यह सुप्रसिद्ध श्लोक है, प्रसंग तो आप समझ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय का श्लोक है। 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के एक अति महत्वपूर्ण विषय का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवतम के 10 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर संपूर्ण भागवत में चर्चा की गई है। उसमें ऊति एक विषय है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषय हैं। तो ऊति संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है वासना भोग की लालसा। तो शुद्ध गोस्वामी परिभाषा बतलाए हैं ऊतय कर्म वासना। ऊति का अर्थ होता है वासना, कुछ प्राप्त करने की इच्छा। तो पूरे 7वें स्कंध में ऊति का वर्णन है। तो वासना 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सद वासना, भगवान को प्राप्त करने की वासना, या भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, उनके विषय में सोचना, इसके विषय में विविध प्रकार के प्लानिंग, ये है सद वासना। सत कहते हैं भगवान को, सत, और सत के संपर्क होने से साधुओं को भी सत कह देते हैं। इसलिए वह संघ वह समाज जहाँ पर सद चर्चाएं होती है उसको सत्संग कहते हैं या संत समागम कहते हैं। वास्तव में सत भगवान का नाम है, अनादि काल से अनंत काल तक जिनकी सत्ता रहती है उनको सत कहते हैं, परमानेंट। तो सत से संबंधित होने के कारण महात्माओं को साधुओं को भी सत कहते हैं। जैसे कभी कभी व्यवहार में रिक्शा बुलाना है रिक्शा वाले को तो संबोधन कहते हैं ए रिक्शा इधर आओ, तो उस रिक्शा वाला नहीं कहते हैं, रिक्शा कहते हैं तो समझता है कि मुझको बुला रहे हैं। वैसे ही सत से संबंधित होने के कारण हम लोग महात्माओं को भी सत कह देते हैं, सत्संग। और वैसा समाज जिनमें भगवान की चर्चा हो, भगवान के विषय में बातें हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो एक मानसिकता है, एक वांछा है कि हम केवल भगवान के विषय में चर्चा करें। वह भगवत परिकर भगवत पार्षद करते हैं, तो भगवत संबंधी चर्चाएं या भावनाएं कामनाएं लालसा, इसको सद वासना कहते हैं। तो ये सप्तम स्कंद में 5 अध्याय सद वासना के लिए रखा गया है। पूरे 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, 5 सद वासना के लिए और 5 असद वासना के लिए, कृष्णेतर विषयों की वासना। बाकी सब कुछ चाहिए संसार के, लेकिन कृष्ण नहीं चाहिए। भोगों की जो वासना है, संसार को भोगने की जो लालसा है, उसको असद वासना कहते हैं। तो असद वासना के लिए भी 5 अध्याय दिया गया है, सद वासना असद वासना, और तीसरा है मिक्स वासना, मिश्रण, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी, कुछ संसार भी भोगना चाहिए और भगवान का भी भजन करना चाहिए। तो मिक्स वासना भी 5 अध्याय में है। तो शुरू के 5 अध्याय में असत वासना का वर्णन किया गया है। असत वासना का प्रतिनिधित्व हिरण्यकश्यप कर रहा है। सब कुछ चाहिए, दुनिया के जितने भोग हैं, त्रिलोकी के लोक हैं, दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं, जितने गायक हैं, जितने समाज के लोग हैं, सब मेरे स्तुति में, मेरे इंजॉय के लिए होना चाहिए। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमरता का वरदान ले लिया, न दिन में मरूं, न रात में, न घर में, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, ये सब संसार को एंजॉय करने की वासना है, असत वासना। इसका वर्णन 5 अध्याय में हुआ है, 1 से 5। और केवल कृष्ण वासना में पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस, यह प्रहलाद महाराज का चरित्र 6 से 10 तक, 6वां अध्याय से 10वां अध्याय तक सद्वासना का वर्णन है। तो अभी हम लोग सद्वासना की चर्चा करने जा रहे हैं। 6 से 10 के अंदर है, 8वां अध्याय मध्य में है, 6, 7, 9, 10 से बीच में है, मध्य में 8वां अध्याय। तो सद्वासना मतलब पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस, वासना मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना। एक संसार को भोगने की चेतना, एक भगवान के लिए चेतना, जिसको श्रील प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियसनेस कहे, कृष्ण वासना, कृष्ण भावना। तो कृष्ण भावना से परिपूर्ण प्रहलाद का विचार इसमें आया है, उनकी भावना। और इसके बाद ये सब बताने वाले देवर्षि नारद बैठे हुए थे राजसीय सभा में। तो प्रश्नकर्ता महाराज युधिष्ठिर ने अब मिक्स वासना वालों के लिए भी कुछ पूछ लिए, कुछ इधर कुछ उधर है। तो ये है जगत व्यवस्था में वर्णाश्रम, जगत चलाने के लिए एक मैनेजमेंट के दृष्टि से लोगों को 4 भागों में बांटकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसमें बांट करके जगत की मैनेज किए और उसके अनुसार उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसके स्तर के अनुसार धर्मों में लगा देना, ये है वर्णाश्रम व्यवस्था। ये मिक्स वासना वाले हैं, कुछ भोग भी है, कुछ धार्मिक आध्यात्मिक भावना भी है। तो ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थी का, सन्यासी का, स्त्री का, सबके विषय में महाराज युधिष्ठिर ने पूछा है। तो 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में, 14वें अध्याय में गृहस्थ धर्म का वर्णन है। तो प्रत्येक गृहस्थों को उस अध्याय को महीना में 2-3 बार जरूर पढ़ना चाहिए, कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ लेना चाहिए 14वें अध्याय। उसमें अपने कर्तव्य के विषय में बतलाया गया है। ब्रह्मचारी का धर्म भी वर्णन है, स्त्री धर्म भी वर्णन है, और सबका लक्ष्य है कृष्ण भावना। नहीं तो महाप्रभु तो कहते हैं सनातन गोस्वामी से कि 4 ही वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म करियाऊ से ही रौरव पड़ी मजे। 4 वर्ण और आश्रम के लोग यदि अपने आचरण को ठीक ढंग से करते हैं और 1 माइनस पॉइंट है कि वो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तो अपने धर्म पालन के साथ भी नरक चले जाएंगे। फर्स्ट क्लास के ब्रह्मचर्य पालन करने वाले नरक में जाएंगे। सब कुछ छोड़कर विरक्ति में रहने वाले सन्यासी भी नरक चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण नहीं बनाया। तो लोगों का स्टैंडर्ड बहुत कम है, इसलिए थोड़ा ऊपर उठाने की वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो इसी क्रम में अभी 6वें अध्याय में असुर विश्वविद्यालय में प्रहलाद महाराज का प्रवचन हुआ अपने असुर साथियों के, सहपाठियों के लिए, 2 अध्यायों में, 6वां और 7वां में। 6वां अध्याय में जब प्रवचन कर लिए तब बच्चों ने पूछा कि प्रहलाद ये सब कहाँ सीखा। 3 बार पूछा गया कि तू कहाँ से सीखे हो। 1 बार हिरण्यकश्यप पूछा था, 2 बार संडामर्क पूछे थे और 3रा बार उनके साथी पूछ दिए। तो 3ों बार सैद्धांतिक रूप में कहीं बात कहे, लेकिन वो उधर इनडायरेक्ट कहे, यहाँ डायरेक्ट कहने लगे। यह मैं वहां कहे कि बिना महत्पुरुषों के चरणों का रज में स्नान किए ज्ञान नहीं आता। दुनिया के विषयी लोग भोग को भोगने वाले चर्वित चर्वणानम, तो एक चबाए हुए को ही चबाने वाले ऐसे लोग जिनकी बुद्धि इतनी स्थूल है कि जैसे गन्ना चूस कर फेंक दिए फिर उसको उठाकर चूस रहे हैं, तो ऐसे केवल एक ही विषय को चरवण करने वाले विषय क्या इसको समझेंगे। ये तो परमहंस महात्मा समझ सकता है, उनके चरणों के आश्रय में ही समझा जा सकता है, ऐसे बोले थे अपने पिता के सामने। संजोग की बात की वो पूछ ही नहीं पाया कि तुम किसके किस महात्मा के चरण से सीखे हो, लेकिन बच्चे पूछ दिए। बच्चे पूछे कि प्रहलाद बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं कि एक ही टीचिंग सेंटर है, अलग से तो तुमको कोई कोचिंग कराता नहीं, घर पर कोई महात्माओं की व्यवस्था नहीं, कहाँ से सीख गया। तब प्रहलाद कहे कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो पिताजी चले गए थे मंदराचल में के घाटी में तपस्या करने, और इंद्र अचानक आक्रमण किए और मेरी माँ को अरेस्ट कर लिए। तो उस समय देवर्षि नारद ने मेरी माँ के विषय में कहा, इंद्र को समझाया, छुड़ा लिया, और फिर साधुओं के आश्रम में रहकर कुछ अध्यात्म भगवान के विषय में ज्ञान दिए। तो बच्चे पूछते हैं कि लेकिन आपकी माँ तो एक माला भी जप नहीं करती है। तो कहते हैं कि स्त्रीत्वात और कालत्वात इसका कारण है। एक तो कम बुद्धि वाली स्त्री है, तो टीकाकार लोग स्त्रीत्वात का अर्थ किए हैं, मेरा दोष नहीं है। एक कहते हैं कि स्त्रियों की बुद्धि थोड़ा कम होता है, नहीं पकड़ पाई, और दूसरा अर्थ करते हैं कि स्त्रियों को बहुत काम धंधा घर में होता है, इसका ज्यादा महत्व नहीं दे पाई, भूल गई। और कालत्वात टाइम इतना बीत गया कि कोई भी बात समय के अंतराल में भूल ही जाता है। तो बच्चे कहते हैं, और आपके साथ भी ये बात है ना, बालत्वात और कालत्वात तो आपके साथ भी है। बच्चों की बुद्धि भी वैसी ही होती है, जो याद किए उसको भूल जाते हैं, वो भी खेल कूद में रहने वाले वो कैसे याद रखेंगे। काल तो आपके साथ भी बीता है ना, तो और आप तो जन्म भी नहीं लिए थे, आप गर्भगत बालक थे, आपको कैसे याद हो गया। कहते हैं कि ये मेरी योग्यता नहीं है, देवर्षि नारद की विशेष अनुकंपा से यह ज्ञान मुझको है, क्योंकि देवर्षि ने मेरे को ही लक्ष्य करके उपदेश किया था, माँ को नहीं, माँ तो एक बहाना थी, लक्ष्य मुझे किया गया था। तो मैं देवर्षि की कृपा से अनुकंपित हूँ, उनके अनुकंपा से अनुकंपित हूँ, इसलिए मुझे असुर बालक को भी भगवत पार्षदत्व प्राप्त हुआ। तब बच्चे फिर पूछते हैं कि प्रहलाद क्या बताए, देवर्षि नारद क्या बताए। तो देवर्षि नारद जो ज्ञान दिए थे उसको 7वें अध्याय में बतला दिए। इसके बाद बच्चे तो अब डेक्स बजा कर कीर्तन चालू कर दिए, पूरा असुर यूनिवर्सिटी भक्ति भावना से भर गई, पूरा वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गए पूरा। तो जब संडा मर्क आए, वो पहले जानते थे कि प्रहलाद सुधर रहा है, प्रहलाद को ही लीडर बनाकर बेचारे कहीं मीटिंग में चले गए थे, और इधर प्रहलाद पूरा सुधार दिया। तो अब तो प्रहलाद को बिना कुछ कहे तो कहना तो चोखो तीर नचाए, पत्थर पर के मारना चोखो तीर नचाए। अगर तीखा बाण है और उसको पत्थर पर मारा जाए तो पत्थर का क्या बिगड़ने वाला है, तीर ही टूट जाएगा। तो उसी प्रकार अब प्रहलाद के पास माथा फोड़ना ठीक नहीं है, अब जाकर सीधे रिपोर्ट किए गए कस्बो को कि राजन अब कंट्रोल की बात नहीं, एक प्रहलाद की ही बात नहीं, पूरा यूनिवर्सिटी चेंज। तो अब हिरण्यकश्यपु बुलाया अपने राज्यसभा में प्रहलाद को और कहा कि अब मुझे निश्चित रूप से इसको मारना पड़ेगा। तो इसके पहले आप लोग सुन चुके हैं, बहुत कुछ बोला है, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमम स्तब्धम मत शासनोधृतम नेशेत्वादे यमक्षयम, नीच कहीं का जड़ दुर्विनीत, तुम्हारे पास कोई भी न बुद्धि है न तुम्हारे पास शिष्ट व्यवहार है, अपने बाप के सामने तुमको बोलने में संकोच नहीं हो रहा है, नीच कहीं का स्तब्ध है, स्तब्ध मतलब एकदम जड़, मेरे शासन के उल्लंघन करते हो, निश्चित रूप से अब समझ में आ गया कि तुम यमराज के पास जाना चाहते हो। और किसके सामने? क्रुधस्य जस कंप्यन्ते त्रयोलोका सहेश्वरा, जिसके क्रोध करने पर तीनों लोक कांपता है, लोक मतलब पर्वत पहाड़ कांपता है, नहीं सहेश्वरा सारे लोकों के ईश्वर सब कांपते हैं, इंद्र वरुण कुबेर सूर्य चंद्रमा पवन देव मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते, सब मेरे भय से कांपते हैं। तस्य मे भीतवन मुद्धा, उनके बाद भी तुम भयभीत नहीं हो रहे हो, अभीतवत तुमको कोई भय नहीं है, इसका मतलब कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम मूढ़ हो, जड़ हो। कोई भी बुद्धिमान समझ सकता है कि हिरण्यकश्यपु महाराज माने क्या होता है, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब जड़ हो। लेकिन एक आश्चर्य है कि तुमको कहां से किस सोर्स से बल मिल रहा है, जिसके बल पर तुम इतना अहंकार में हो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो, किम बलोत्थेगा, कौन तुमको बल प्राप्त हुआ है, कहां से, ये जिज्ञासा कर रहा है। तब कहते हैं प्रहलाद महाराज इस श्लोक पर, प्रहलाद वाच न केवलम मे भौतश्च राजन सवई बलम बलिनम च परेशम परे वरे मे स्थिर जंगमाजे ब्रह्मादयो जन बसम प्रणीता। इसको चक्रवर्ती ठाकुर एक एक शब्द करके इसका अर्थ कर रहे हैं। तो राजन संबोधन पर चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि प्रहलाद महाराज की बातों को, जब हिरण्यकश्यपु के बातों को प्रहलाद महाराज सुने तो संबोधन करते हैं, हे राजन। राजन संबोधन का अर्थ है कि राजा होने के कारण सूक्ष्म दृष्टि से प्रत्येक विषय में आपको सोचना चाहिए, परंतु आप अपने अहंकार के कारण किसी भी विषय पर गंभीरता से चिंतन नहीं कर रहे हैं। यदि सोचते तो आपको स्वतः ज्ञान हो जाता, लेकिन जैसी उपाधि है वैसी आपकी क्षमता नहीं है। व्यंग कर रहे हैं कि आप राजा हो लेकिन एक एक पॉइंट पर विचार नहीं कर पा रहे हो। राजा अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने क्वालिफिकेशन योग्यता के कारण राजता है, समाज में वो शोभा पाता है, सुंदर लगता है। उसकी सुंदरता यह है कि प्रत्येक चीज को समझता है, वो अध्यक्ष होता है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ होती है और देखता है, लेकिन आप विचार नहीं कर रहे हैं। अथवा राजन संबोधन का यह भी अभिप्राय है कि आपके बुद्धि पर रजोगुण छा गया है, इसलिए आपको प्रश्न करना पड़ रहा है कि किसके बल से मैं निडर हूं। यदि आपकी बुद्धि रजोगुण से आवृत नहीं होती तो आपको स्वयं ज्ञात हो जाता कि मेरे बल का स्रोत कौन है, लेकिन दुख की बात है कि आपको यह समझ में नहीं, रजोगुण छा गया है। और राजन संबोधन करके यह भी कहना चाहते हैं कि आप इतना महान होकर इस सभा में शोभित हो रहे हैं, लेकिन आप इस तरह के बेतुका प्रश्न कर रहे हैं। आपको अब तक नहीं समझ में आया कि मैं किसके बल से बलवान हूं, मुझे किसके बल का सहारा है, यह अब आप सुनिए। वे केवल मेरे ही बल नहीं है, आपके भी बल वही है। आपके हाथ में जो खड़ग है, जिससे मुझको धमका रहे हैं, वह भी बल उसी सर्वेश्वर का है, जिसके बल से आप इतना त्रिलोकी के विजयी बने हुए हैं, और वे ही मेरे आराध्य हैं, और मुझको निर्भयता प्रदान करने वाले वे भी वही हैं। आप में तीनों लोक को कपाने की क्षमता भी देने वाले वही हैं, और मुझको आप जैसे त्रिलोकी को कपाने वाले के सामने निर्भयता देने वाले भी वही हैं। नास्तिकों के बुद्धि में प्रविष्ट होकर उनके स्वरूप का खंडन करने की सामर्थ्य भी उन्हीं का है, और आस्तिकों की बुद्धि में प्रवेश करके भगवत स्वरूप का मनन करने की भी बुद्धि उन्हीं का है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। प्रहलाद कहते हैं, राजन जगत में जितने बलवान हैं सबके बल वही सर्वेश्वर है। हिरण्यकश्यपु पूछा कि कौन है जिसका बल सबको है, तो प्रहलाद कहते हैं कि हे पिता, आपको वर देने वाले जो चतुर्मुख ब्रह्मा है एवं चरात्मिका जो समस्त सृष्टि जिनके बस में है वह है ब्रह्मा दयो जन बसम प्रणीता। ये हमारा और आपका ही नहीं, ब्रह्मा को भी वही बल देते हैं, वही पावर सोर्स है। वहां से स्विच ऑफ कर दिया जाए तो सब लटके रह जाएंगे। ये जो पंखा चल रहे हैं, बल्ब है, वो चाहे 10 वाट का हो या 100 वाट का या 1000 वाट का, अगर पावर हाउस से स्विच ऑफ कर दिया जाए तो सब लटका रहेगा। वहां से ऑन करने पर तो बड़ा भारी फोकस लाइट है। ये जो लाइट दिख रहा है 1000 वाट 2000 वाट का, वो वहां से उसी पावर सोर्स से कनेक्टेड है। तब वहां से कनेक्शन हटा कि लटका रह जाएगा, इसमें कोई बल नहीं। उसी प्रकार श्रुति भी उद्घोष करती है कि वही सबके बल है, ब्रह्मा दयो जन बसम प्रणीता न केवलम में भवतस्य राजन। वास्तव में दो श्लोक एक साथ है। श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, सब लोगों ने दो श्लोक का अर्थ एक साथ किया है, सतवां और अठवां। कहते हैं स ईश्वर काल उरु क्रमोसौ ओज सह सत बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वम परमसु शक्ति भी सृजत प्रवत्यति गुणै त्रयेश। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं और केन बसम पड़ीता, जो प्रश्न किया है कि किसके बल से किम बलोत्यगा, तो किम बलोत्यगा पूछा है किसके बल से आप इतना अहंकार में हो। तो यहां उत्तर देते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एकदम वो कांपा रहा है, थर 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 क्रोध में कांप रहा है। कोई भय से कांपता है, वो क्रोध से कांप रहा था। तो कह रहा है कि संपूर्ण जगत मेरे अधीन है, मैं सबका स्वामी हूं, मेरे बल के सामने किसका बल हो सकता है। तो जिसका वर्णन कर रहा है वो कौन है, उसका क्या नाम है, कौन ईश्वर है, कौन हरि है जो तुम्हारी रक्षा करता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हाँ बता रहा हूं कौन है। अब इधर स ईश्वर, वो जो सब में बल दे रहे हैं वही ईश्वर है, ब्रह्मा देव जैन बसम पड़ीता स ईश्वर, वही ईश्वर है, वही कंट्रोलर है, वही काल है सबको नियंत्रित करने वाले। उरु क्रमोसव, वही उरु क्रम है। उरु क्रम का मतलब जो तीनों लोकों को अपने चरणों से अतिक्रांत करते हैं, दो लोक में ही सारे जगत को नाप लिए, वामन देव के रूप में आए नीचे के लोक को एक डेग में और दूसरे डेग में ब्रह्मा के तक ऊपर लोक, यहां तक इतना तेज उनका चरण बढ़ा कि उस ब्रह्मांड के सीमा के अंदर नहीं रहा, ब्रह्मांड के कवर को फाड़ दिया। उनके अंगूठे से, बाएं अंगूठे से लगकर ब्रह्मांड का कवर फट गया पूरा, 7 आवरण से युक्त कवर फट गया। और कवर फट करके वो स्पिरिचुअल जल जो कार्यरोधक जल का है उसका जल आने लगा भगवान के चरणों को धोकर। पंचम स्कंद के 17वें अध्याय में वर्णन है। तो वो चरण धोवर जब आया सत्य लोक में तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल में उसको रोके, वही गंगा है। तो जो त्रिलोकी भी कम पड़ गया, जिनके 2 डेग से भी कम पड़ गया, उसको पार कर गए, 3 डेग का तो सवाल ही नहीं है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के शक्तिमानों को अपने चरणों के अंदर रख लिए, ये है उनकी लीलाएं जो चरणों से अतिक्रांत करने वाले हैं, उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। 3 चरणों में समस्त संसार को 2 चरणों में नापने वाले हैं, उनके सामने आपकी सामर्थ्य की क्या गणना है। वो उरुक्रम है, वही उरुक्रम है और जिनके कृपा से संपूर्ण जगत चलता है। और ओज सह सत्व बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वम परमसु शक्ति भी सृजति वर्त्यति गुणै त्रयेश। अतः उन्हीं से सारा बल आता है, सब बल, केवल बल ही नहीं प्रदान करते, इंद्रियों में शक्ति देते हैं, मन में शक्ति देते हैं, शारीरिक शक्तियां, धैर्य और सबके आश्रय स्वरूप वही है। उनसे बढ़कर कोई शक्तिमान नहीं हो सकता, कोई नहीं। वे परमेश्वर हैं, तीनों लोकों के नियंता हैं, सतगुण रजोगुण और तमोगुण सबके नियंता हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि हे राजन, अगर वो पूछ दे कि वो तुम्हारी रक्षा कर लेगा, इतना बहक रहे हो, प्रहलाद कहते हैं मेरी अपेक्षा नहीं है वो रक्षा करे, उनकी जैसी इच्छा वैसा। आप इस तरह के विचार छोड़ दो। आगे के श्लोक में कहते हैं कि अपनी असुर भाव छोड़ दो और भगवान का शरण ले लो। क्यों इस तरह की मूर्खता कर रहे हो? प्रथम बार प्रहलाद महाराज आगे आने वाले श्लोक में शिक्षा दे रहे हैं अपने पिता को। शिक्षा मतलब इस रूप में कि आप स्वीकार करो, जहिया सुरम भाव मीम स्व तमात्मन समम मनो धस्व न संति विषम, ये सब राग द्वेष छोड़ो और भगवान का भजन करो। पहले भी कहे थे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, लेकिन उपदेशात्मक नहीं कहे थे, सुंदर अध्ययन के विषय में कहे या बनम गतो जन हरिमाश्रयता कहे, लेकिन इस बार कहते हैं कि छोड़ो और इसको करो, आदेश दे रहे हैं। तो हद हो गया, आज तक हिरण्यकश्यपु को कोई आदेश दिया ही नहीं, एकदम क्रोधित हो गया। तो इस श्लोक में समझने वाली बात यह है कि हम थोड़े थोड़े बातों में अहंकार कर लेते हैं। हिरण्यकश्यपु तो खैर बहुत बलवान था, लेकिन हम लोगों को थोड़ी भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, थोड़ा पद पोजीशन प्राप्त होता है, थोड़ा मान प्रतिष्ठा मिल जाता है, तो हमारे अंदर अहंकार हो जाता है। श्रील प्रभुपाद यह समझाने की कोशिश किए हैं अपने तात्पर्य में कि भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि जहां जहां जो ऐश्वर्य दिखाई देता हो, विभूति दिखाई देता हो, तो वो समझना चाहिए वो मेरा है। एक बार महाराज श्री से कोई प्रश्न किया बहुत पहले कि भगवद गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं इसमें मैं हूँ उसमें मैं हूँ, आज होते तो कह देते कि मैं इंस्ट्रूमेंट में कंप्यूटर हूँ, वो कह देते हो। जहां जो बड़ा चीज देख रहे हैं वहां कहते हैं मैं हूँ, बलवानों में बल हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान हूँ, विद्वानों में उसना कवि, धनुधारियों में इंद्र ए हूँ, अर्जुन हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, ये सब चीज में वही है। तो इतना बहस बांध रहे हैं तो आज तो कह देते कंप्यूटर उस समय नहीं था, नहीं तो कह देते कि मैं कंप्यूटर हूँ। तो भगवान कहे कि छोड़े कहाँ है, अब पूरा गीता पढ़े नहीं, कहे कि ये तो कह ही दिया, इसके बाद भी जत जत विभूति मत सत्तम श्रीमद मूर्जित में हुआ तत्त देवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभव। इतना ही नहीं, ये तो थोड़ा सा काउंट किया, इसके अलावा जहां जहां भी आश्चर्यजनक विभूति दिखे वहां मेरा ही तेज समझना चाहिए। पहले भविष्यवाणी कह दिए कि अगर कंप्यूटर का भी खोज होगा तो वहां समझ लेना मैं ही हूं। सुनमद मूर्ति ए होवा तत्त देवावगच्छत्वं, भगवान बड़े स्नेह में कह रहे हैं कि इसको समझने का कोशिश करो कि मेरा ही तेज है, ऐसा नहीं कि उसका हो गया। लोगों की प्राय प्रवृत्ति है जब किसी कार्य में असफलता मिलता है, लॉस होता है, हानि होती है, तब तो दोष भगवान का, ठीक से नहीं किया उसका, इतना भजन किया फिर भी साथ नहीं दिया, रोज बिना पूजा किए खाता ही नहीं हूं, देखो हमको सफलता नहीं दिया, तब दैव के दोष है। अगर कुछ पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया तब तो अपना पुरुषार्थ है, उसमें अब दैव का नाम नहीं है। यह है संसारिक लोगों की मानसिकता, और भक्तों की ठीक विपरीत। अगर लॉस हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ उसमें भी, और प्राप्त हुआ उसमें भी, दोनों में भगवान की कृपा समझते हैं। अगर कुछ हानि हो गया तो समझते हैं वो मेरा बुरा कर्म बहुत प्रचंड था, बहुत प्रबल था, लेकिन प्रभु ने केवल इतना में ही संक्षिप्त कंसेशन कर दिए, ये प्रभु की कृपा से इतना में ही खत्म हो गया। अगर कुछ प्राप्त हुआ तो सोचते हैं अहो मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रभु थोड़े से किए हुए को इतना मान दे रहे हैं, मुझको अपने कंधे पर चढ़ाए हैं, सिर पर चढ़ा लेते हैं। रहत न प्रभु चित चुक किए कि करत सुरति सौ बार हिए कि भगवान हमारे गलतियों को तो देखते नहीं, उनका एक स्वभाव है कि अपने भक्तों की कमी को नहीं देखते, और कुछ अच्छा चीज हुआ है, भजन हुआ है, प्रणाम किए हैं, उनको सम्मान किए हैं, तो उसको सैकड़ों सैकड़ों बार याद करते हैं। यह प्रभु की विशेषता है, करत सुरति सौ बार ही एक ही, सैकड़ों बार याद करते हैं कि अहो इसने हमारे लिए ऐसा किया, इसने ऐसा किया। भरी सभा में, अयोध्या में, राजसभा में भगवान श्री राम सुग्रीव की प्रशंसा कर रहे हैं, देखिए अपने बराबर आसन पर बिठाए हैं, किसको, बंदर को, सारा समाज देख रहा है ये क्या हो रहा है। बशीर जी से कहते हैं, गुरुदेव ये हमारे मित्र सुग्रीव जी हैं, इनकी कृपा से मैंने रावण पर विजय प्राप्त किया, इन्होंने हमारे लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान यह भूल गए कि बाली के मरने के बाद सुग्रीव भूल गया था, अपने राज भोग में भूल गया था, जाकर लक्ष्मण जी को याद दिलाना पड़ा, और साधारण रूप में याद नहीं दिलाना पड़ा, पूरा क्रोध के साथ। तो यह भगवान चर्चा ही नहीं किए कि मैंने इनकी सहायता किया, इनको राज दिलाया, लेकिन अपने टाइम पर इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, भूल गया, ये नहीं कहे। ये कहते हैं कि इनके कृपा से मैंने अयोध्या लंका पर विजय प्राप्त किया। तो रहती न प्रभु चित चूक किए कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि क्या बतलाऊं ऐसा साहब कोई देखने सुनने को नहीं मिलेगा, प्रभु तर तर कपिदार पर तिहके आप समान, तुलसी न कहूं राम सो साहिब सील निदान। प्रभु पेड़ के नीचे बैठते हैं और उनके सेवक बंदर पेड़ के ऊपर। अगर किसी बोस के कुर्सी पर कोई नौकर बैठ जाए तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन कुर्सी पर छोड़ो सिर के ऊपर बैठते हैं, फिर भी उनको कोई टेंशन नहीं है। तुलसी न कहूं राम सो साहिब सील निदान। तुलसीदास कहते हैं कि कोई ऐसा साहब आप देखे हैं क्या, ऐसा सील निदान। उनको पता है कि मेरा सेवक इतना ही बुद्धि रखता है, चलो यही ठीक है, बस यही याद करते हैं कि ये हमारे लिए लंका में गया था, हमारे लिए युद्ध किया था, बस। तो इस प्रकार भगवान दोषों को नहीं केयर करते हैं, गुण को स्वीकार करते हैं। भक्तों को पता है कि हमारे थोड़े से गुण को भगवान बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि कृष्ण के इन गुणों को अगर कोई विचारे तो उनका भजन छोड़कर कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं कि हे सनातन मैं क्या कहूं, ओ कितने बड़े कृतज्ञ हैं, कितने भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। वो भक्त वत्सल है, अपने भक्तों का बहुत ज्यादा केयर करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन हमारे पास वो क्षमता न हो कि भगवान के लिए हम तड़पे रोवे। माँ बच्चों से प्रेम करती है तो बच्चों की एक विशेषता है ना कि वो माँ को चाहता है। कभी कभी काम करती रहती है और बच्चे रोते रहते हैं, किचन में भोजन बना रही रोते हैं, और रोकर क्या कहते हैं कि मुझको गोद में लो, स्तन पिलाओ और मेरे साथ सो, भोजन छोड़ो, ये कहते हैं। वो सोना चाहते हैं लेकिन वो, या खेलना चाहते हैं माँ के साथ, कहती चलो हटो बाद में, चलो चलो, हटाती है फिर भी हो जाता है, साड़ी पकड़ता खींच कर तमाचा मारती है फिर भी उसी को पकड़ता है। अगर उस समय पिता या भाई कहे कि मेरे पास आओ तो ना, उसी के पास जाएगा जो मार रही है। तो उसके पास तो ये क्षमता है कि भगवान चाहे दुख दे सुख दे तभी भी उनके चरण को पकड़े, हम तो ऐसा नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं कि कृतज्ञ है, भक्त वत्सल तो है ही, भक्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन कृतज्ञ है, एक बार भी प्रणाम किया उसको भी याद रखते हैं। कंटिन्यूस की तो बात छोड़िए, सकृत एवं प्रपन्नो जन तवास मिति जयाचते अभयम सर्वदा तस्मयी ददा में तद प्रथम मम। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का वाक्य है, कि जो एक बार मेरे शरण में आकर प्रणाम कर दे और कहे कि हे श्री राम मैं आपका हूं, तवास्मिति जयाचते, मैं आपका हूं इतना कह दे, तो अभयम सर्वदा तस्मयी, उस व्यक्ति को सारे भय से मुक्त कर देता हूं। ये मेरी व्रत है, प्रतिज्ञा है, गप नहीं कर रहा हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो यह भगवान का विचार है, तो कृतज्ञ है। अच्छा, कृतज्ञता स्नेह तो माता पिता को अपने बच्चों में होता ही है, लेकिन माता पिता अगर गरीब हो, कमजोर हो, तो अपने बच्चे को न अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, न पढ़ा लिखा सकते हैं, न उनको मेंटेनेंस भोजन दे सकते हैं। तो अगर प्रभु इसी तरह असमर्थ हो तो नहीं, समर्थ, सारे जगत के स्वामी हैं और सर्व समर्थ, इसलिए कोई टेंशन नहीं, समर्थ समर्थ है, संपूर्ण जगत के स्वामी, सब लोक महेश्वरम, जहां भी जो कुछ भी देख रहे हैं उन्हीं का है। इसलिए हमारे प्रभु गरीब नहीं है, वो हमारी जरूरत की चीज सप्लाई करेंगे। अच्छा, एक विचार है कि अगर मान लो कोई धनी बाप हो, लेकिन इतना कंजूस हो कि अपना पासबुक को ही संभालने में रहता है, एक पैसा भी न स्त्री को देता है न बच्चे को, और कंजूस से पाला पड़ जाए तो धन लाकर क्या करेगा। तो हमारे प्रभु ऐसा नहीं है, बदान्य, बड़े उदार है। महाप्रभु कहते हैं भक्त वत्सल समर्थ, भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य, हेन कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य, ऐसे कृष्ण को छोड़कर कोई भी पंडित किसी को भजन नहीं करता। जैसे तुलसीदास कहते हैं कि हमारे प्रभु जैसा कोई शीली नहीं है, वैसे महाप्रभु कहते हैं। सुनिए, इस बात को अगर कोई विद्वान व्यक्ति जान जाए तो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता है, नहीं जानता है इसीलिए नहीं करता है। कहते हैं कि कोई भी विद्वान व्यक्ति, कोई भी जानकार व्यक्ति इस बात को जानकर भगवान का ही भक्ति करता है। कि प्यार का प्रथम शब्द बोल रहा हूं कि पीछे का तो याद आ रहा है कि उद्धव प्रमाण, उद्धव जी प्रमाण है कि कोई भी जानकार व्यक्ति कृष्ण का भक्ति नहीं छोड़ सकता। इसी प्यार के नीचे है भक्त वत्सल के तक समर्थ वदान, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजयन। और तो उसी में उद्धव जी की बात करते हैं कि उद्धव जी जैसा प्रमाण दे रहे हैं कि जो कोई भी गुणवान व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति कृष्ण के इन गुणों पर विचार करके भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता है, वो जानता है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। उद्धव जी प्रमाण दे, कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, कौन ऐसा दयालु है कृष्ण से बढ़कर जिसका शरण लिया जाए। तो इस बात को जानना चाहिए, जानकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं जानते हैं तो अपने को विद्वान मानते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं दूसरे स्कंद के दूसरे पांचवें अध्याय के 12 नंबर के श्लोक में कि मैं भगवान को प्रणाम करता हूं। किस लिए प्रणाम करता हूं? कि जिन भगवान की माया ने सबकी बुद्धि को मोहित कर दिया है और ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि दुनिया को चलाने वाले भगवान हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगत गुरुम। कहते हैं अल्पज्ञ लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं। मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूं कि भगवान श्री वासुदेव को ध्यान करता हूं जिनकी माया ने लोगों को मोहित कर दिया है। भगवान को जगत गुरु मानकर भजन करना चाहिए, लेकिन यह नहीं जानते मुझको जगत गुरु कहते हैं कि जगत की सृष्टि ब्रह्मा करते हैं, लेकिन यह उनको पता नहीं है कि ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाले भगवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंती जत सूर्य। तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ रहे हैं कि लोग मुझको श्रेय दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को स्वीकार नहीं है जगत गुरु कहना या जगत पितामह कहना। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया है जगत गुरु कहना, अपने लोग कहते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्मा को दिक्कत हो रहा है।
क्योंकि संसार को चलाने वाले सबसे बड़े हितैषी भगवान है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये है वो है। तो इस बात को समझना चाहिए, समस्त जगत को कंट्रोल करने वाले जमराज, अच्छा और बुरा का फल देने वाले, वो जब जमदूत जाकर उनको सूचना देते हैं कि अजामिल को पकड़ने गए थे वहां तो मरने से बच गए, चार सिद्ध लोग आकर जमपास काट दिए, अगर आप उन चारों सिद्धों को पकड़कर दंडित नहीं करते हो, चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, तो हम तुम्हारे जैसे जुगनू की नौकरी आज से नहीं करेंगे। ये मरने के लिए नौकरी करेंगे। चित्रकेतु चित्रगुप्त लिखता है इतना बड़ा रिपोर्ट और गए लाने के लिए और वहां जाग पर आ गई, किसी तरह जान बचा। इस तरह के रिस्क लेकर हम नौकरी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप जगत कंट्रोलर हो तो उन चारों सिद्धों को पकड़ो और दंडित करो, क्या हो गया बतलाओ तो सही, क्या घटना घटी, घटना क्या घटी, हम लोगों के डर से अपने बच्चे को पुकारा नारायण बस इतने प्रसिद्ध आ गए। तब तो जमराज की होश उड़ गई, नारायण कहा, अरे मूर्खो तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है मेरी ही है कि मैंने ऐसा कोई स्पेशल क्लास नहीं लिया। तब कहते हैं कि अहम महेंद्र, मैं ही नहीं, वो पूछते हैं कि इस जगत के कंट्रोलर केवल आप हैं कि और लोग हैं। तब कहते हैं अहम महेंद्र नृति प्रचेता सोमोग निविष पौनोच आदित्य विश्व बसोत साध्या मरुद गड़ा रुद गड़ा सिद्धा। छठवें स्कंद के तीसरे अध्याय के 14-15 दो श्लोक में जमराज कहते हैं कि मैं महेंद्र निरिति और प्रचेतागण चंद्रमा सूर्य ग्रीष्म भगवान शिव पवन और अर्क माने सूर्य बिरिंची ब्रह्मा आदित्य अदिति के पुत्र देवतागण विश्वदेवा वसुगण सात्यगण मरुदगण रुद्रगण अन्य जे विश्व सिजो अमरेशा, इनके अलावा और भी जिनका नाम मैं नहीं लिया, वो सारे देवता रजस तमस्का भृगु अंगिरा पुलह क्रतु वशिष्ठ आदि ऋषि जस्य इतम न विदुः स्पिष्ट माया सत्तो प्रधाना अपि किम ततो ने, जितने सत्त प्रधान ऋषि मुनि लोग हैं सब उनके ही इच्छा से उनके ही नौकर हैं, नौकर उस प्रभु का नाम नारायण है, उनकी इच्छा से हम लोग चलते हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं सलाहों में एक गांव का उदाहरण, जैसे धान या गेहूं के अनाज निकालने के लिए तौरी बनता था पहले, एक रस्सी लंबे रस्सी में कई बैलों को बांधकर और घुमाया जाता था, वैसे ही हम सब दौरी के बैल हैं और वेद रूपी रस्सी में सब लोग उनकी आज्ञा रूपी रस्सी में बंध कर चल रहे हैं। केवल मैं नहीं, सूर्य भी चंद्रमा भी शिव भी ब्रह्मा भी सभी लोग जिनके आज्ञा में खटते हैं, नौकर हैं, नौकर जगत की सृष्टि करने वाली जो माया है प्रकृति बहिरंगा प्रकृति, उसको भी ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, दुर्गा के नाम से जानी जाती है, इच्छा नोमपि जस्य च चेष्टते सा गोविंद मादि पुरुषम तमोहम जा, स्वतंत्र कुछ नहीं करती है, उन्हीं गोविंद के सामने हाथ जोड़कर कहती है प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, हाथ जोड़कर दासी है, दासी सामने आने में भी लज्जा करती है, पीठ पीछे रहती है, इतना संकोच करती है, उस दुर्गा का एक पोजीशन है उनके सामने। या स्वयं भगवान कहे तो मानो कहेंगे लोग बहस बांध रहे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति, गीता में कहते हैं कि मैं तीनों लोक का महाईश्वर हूँ, सारे यज्ञ कर्मों का भोक्ता हूँ, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, झूठे बहस बांध रहे हैं। लेकिन जमराज भी यही बात कर रहे हैं, ब्रह्मा भी यही बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं दशम स्कंद के 14वें अध्याय में बछड़ा और बच्चों को चुराने के बाद जब क्षमा याचना किए तो 40 श्लोक में स्तुति किए, तो अंतिम श्लोकों में कह रहे हैं कि हे नाथ, अब 40 श्लोक तो संभव नहीं है तो एक सप्ताह भी कम पड़ जाता है, लेकिन जानंत एव जानंतु, जो दुनिया में जानने वाले हैं आपके विषय में वो जानते रहे कि बहुज्ञा न मे प्रभु, लेकिन मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। मनसो पपसो वाचो वैभव तव गोचर, हे नाथ आपकी वैभव का न मैं मन में विचार कर सकता हूं, न मेरी वाणी वर्णन कर सकती है, न शरीर से मैं आपके इस महिमा को बदला सकता हूं। ये आपका वैभव मेरे बस की बात नहीं है। जो जानना चाहे, जो दावा रखते हैं वो जानते रहे, उनको मैं मना नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कोई बतलावे, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। अनुजानी ही माम कृष्णम सर्वोत्तम वेश सर्वधिक। तो भगवान पूछेंगे तो ब्रह्मा तुम क्या जानते हो मुझको, कुछ नहीं समझते हो क्या? कहते नहीं, अनुजानी ही, जैसा आपके विषय में वर्णन है उसका फॉलो करते हुए अनुजानी ही मैं जानने का कोशिश करता हूँ। और अब तक फाइनल इसी निष्कर्ष पर आया हूँ कि सर्वोत्तम वेक्ष सर्वद्विक, इस संपूर्ण शरीर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को रचने वाले पालन करने वाले केवल आप हैं। तो मेव जगता नाथ हो, आप ही जगत के एकमात्र नाथ हैं, स्वामी हैं, ईश्वर हैं, सब कुछ है। ईश्वर परमा कृष्ण है, ब्रह्मा का ही वाक है। ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वही कह रहे त्वमेव जगतां नाथो जगत एतत् तवार्पितम्। यह संपूर्ण जगत आपके द्वारा अर्पित किया गया है, बनाया गया है, आप ही सब कुछ हो। तो इस रूप में ब्रह्मा जान रहे हैं। शिव जी भी इसी तरह की बात कहते हैं, इंद्र भी इसी तरह की बात कहते हैं, साक्षात ब्रह्मा इसी तरह की बात कहते हैं। भगवान का प्रथम शिष्य, भगवान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस प्राकृत जगत में, वो भी यही कह रहे हैं। उसी बात को यहाँ प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि बलवान तो वही है, न केवलम में भवतस्य राजन, केवल मेरा बल स्पेशल नहीं, सवई बलम बलिनाम चा परेशम, जितने बलवान हैं उन सारे बलवानों में बल वहीं से आ रहा है। परे वरे अमि स्थिर जंगमा जय ब्रह्मादयो जैन बसम फणिता, जिस ब्रह्मा से वरदान लेकर बहुत बलवान बन रहे हो वो ब्रह्मा भी उन्हीं पर आश्रित है। वो ब्रह्मा भी अपना बल नहीं दे रहे हैं, कनेक्शन वहां से कटा तो ब्रह्मा भी ठीका हो जाएंगे। क्या समझ रहे हो कि वरदान लेने से अमर हो जाओगे? संभव ही नहीं है। और जब भगवान नृसिंहदेव ने कस्पु को मार दिए तब प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं भगवान से, प्रभु जान गया आप ही सब कुछ करने वाले हैं। कहते हैं कि अगर कोई भी बलवान, कोई भी बहुत बड़ा ज्ञानी यह दावा रखे कि हम बलवान हैं, हम रक्षक हैं, ऐसा नहीं संभव है, ऐसा संभव नहीं है। बड़े बड़े बलवानों के बल आप है, आप अगर बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, और आप मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता, एकदम ऐसा संभव नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो स्तुति करते हुए भगवान के चरणों में बहुत सुंदर बात कहे हैं प्रहलाद महाराज। कई श्लोकों में स्तुति किए हैं, उसमें एक श्लोक में कहते हैं कि हे नाथ मैं अब समझ गया कि आपसे बढ़कर कुछ कोई नहीं है। कि श्लोक का एक बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, 19वां नंबर के श्लोक में, नातस्य चागत मुदनवति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रति प्रतिविधिर जहां जसेष्टा तावत विभो तनुभृताम तदपेक्षितानाम। हे प्रभु, संसार में देखा जाता है कि माता पिता ये अहंकार रखते हैं कि मैं बच्चों का पालन करता हूँ। कब तक? जब तक आपका कनेक्शन जुटा है तब तक, नहीं तो माताओं के गोद में भी बच्चे मरते हैं। और नातस्य चागत उदन वति मज्जतो नौ, और बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलकर डॉक्टर लोग दावा रखते हैं कि मैं ठीक करता हूँ, दवाइयां रखते हैं, कब तक? जब तक आप उसको जिलाना चाहते हैं तब तक। और छोटे छोटे नौका पर नाविक लोग लेकर समुद्र के लहरों पर तैरते हैं, कब तक? जब आप उसको बचाना चाहते हैं। अगर आप कनेक्शन हटा लिए तो कोई नहीं बचा सकता, आप मुझको बचाने पर लगे थे तो हिरण्यकश्यपु का सारा बल थक गया मुझे, मेरा बाल बांका नहीं हुआ। और आप जब मारने का मन बना लिए तो ब्रह्मा का वरदान काम नहीं किया, चीड़ कर फाड़ ही दिए मेरे बाप को। यह उदाहरण बाहर नहीं लेना है, अपने घर में है। आप जब मारने का मन बना लिए तो ब्रह्मा का वो बाउंड टूट गया, न दिन में न रात में न घर में न बाहर, ऐसा रूप धारण किए कि ब्रह्मा के बाउंड का रक्षा करते हुए मार डाले। जितनी बुद्धि लगाया था हिरण्यकश्यपु सोच नहीं सकते हैं। वो सोचा कि धरती पर कुछ लोग मरते हैं कोई दैवान दुर्घटना में, तो मांग लिया ना धरती पर मरू ना आकाश में मरू, कोई घर में मरेगा या बाहर में, न घर में मरू न बाहर, कोई दिन में मरता है कोई रात में, न दिन में मरू न रात में, कोई मनुष्य से मरता है कोई सांप बिच्छू या दूसरे जीव जंतु मार देते हैं। वो सुअर मार दिया अपने भाई को तो सोचा कि न पशु मारे न आदमी, सोचा कि सुअर भी मार दिया तो हो सकता है पशु भी मार दे, तो कोई नहीं मार सके। और न दिन में न रात में, न सूखा से न गीला से, कभी कभी सूखे हथियार से लोग मारते हैं। शकुनी को समुद्र के थेन से मारा गया, वो किसी हथियार से मर ही नहीं रहा था, गीला से मरा। तो पेट्रोल छिड़क देते हैं, एसिड छिड़क देंगे तो उससे भी ना मरो। सारा दिमाग लगाया था और भगवान ऐसा रूप बनाए, ऐसे पॉइंट में मारे कि सारा बाउंड टूट गया, उसकी सारी रक्षा हो गई और मार भी दिए। तो कहते हैं हे प्रभु, आप मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। तो आज एकदम क्लियर हो गया, तावत विभोर तनुभृतम तदुपेक्षिता नाम, तब तक व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जब आप द्वारा उपेक्षित ना हो। तो इस तरह ज्ञान भक्तों को होना चाहिए कि भगवान ही रक्षक है और भगवान सबसे बड़े बलवान है। इसके बाद दो श्लोक का एक साथ अन्वय, और बाद में प्रहलाद महाराज चाहते हैं कि हमारा पिता भी इस बात को समझे, इस मूर्खता में क्यों पड़ा है, मैं समझ रहा हूँ इसको समझना चाहिए, भजन करे। तो आगे का श्लोक फिर आप सुनेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री। ज्यादा देर हो गया, क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, तुझे एक आध प्रश्न दो चार पांच मिनट कर सकते हैं, पारण कर लिया है ना कि?
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक जीव भगवान के सबॉर्डिनेट पोजीशन में रहता है, इसको समझने में कई जन्म लग जाते हैं। तो किस प्रकार ये हमें समझ आए कि भगवान की एक हम सबॉर्डिनेट पोजीशन है, तो इसकी समझ इसी जीवन में कैसे आ सकती है?
नहीं, इतना जल्दी नहीं है, इसी जन्म में समझें, 10 जन्म लगे उनकी कृपा से उनको समझेंगे। समझने और जानने और भगवत धाम प्राप्त करने के उनके इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, वो जब करें। या हम उनके साथ दावा नहीं कर सकते कि तुम नहीं इतना ही टाइम बाउंड के अंदर करोगे तभी भजन करेंगे, ऐसा भक्त लोग नहीं करते। भगवान की भक्ति उनकी प्रीति के लिए की जाती है, उनको प्रसन्न करने के लिए। और जब हम उनको प्रसन्न करने का नियत बना लेते हैं तो भगवान उस नियत को समझते हैं, जो हम भी नहीं समझ रहे हैं उसको वो समझते हैं। हमारे जो लक्ष्य है उसको भगवान हमसे ज़्यादा समझते हैं। और जब हम उनका भजन करते हुए कुछ दूसरा चीज़ चाहते हैं तो भगवान को आसान हो जाता है वो देने में। हालांकि वो देना नहीं चाहते, उनको गड़बड़ लगता है, फिर भी दे देते हैं, चलो उस आसान पड़ता है। भागवत में एक श्लोक है पंचम स्कंद के 2 अध्याय में कि भगवान बड़ी आसानी से दूसरा चीज दे देते हैं, लेकिन अपनी प्रेमा भक्ति को छिपा कर रखते हैं, उन जनरल पब्लिक में नहीं देना चाहते। तो हम भगवान को जान जाएंगे, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, एक कोट किए हैं प्रभुपाद, तो ये दुर्लभ है कि लोग समझ जाए कि भगवान इस रूप में है, वही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है। इसको समझना कठिन जरूर है, लेकिन हमारे अंदर बहुत तीव्रता नहीं होनी चाहिए, हम जान जाए जान जाए जान जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि भीष्म पितामह भी कहते हैं कि जो जानने के चक्कर में पड़ता है वो और मोहित होता है, वो ज्यादा मोहित हो जाता है। तो जानने या समझने के चक्कर में न पड़कर बिना इस इन सब भावनाओं के उनकी सेवा उनकी आज्ञा का पालन करें तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी एकदम अनजान व्यक्ति कम पढ़ा लिखा केवल प्रीति से उनकी सेवा करता है उसको भगवान स्वीकार कर देता है, और कभी कभी ज्ञान के चक्कर में ज्ञानियों को जन्म जन्म लग जाता है। तो भगवान को जान जाता है दुर्लभ है, सब आत्मा से दुर्लभ। ध्रुव महाराज की प्रशंसा की गई कि थोड़े समय में जान गए, लेकिन ध्रुव महाराज जानने के लिए कुछ नहीं किए थे, कोई प्रयास नहीं, अपने गुरु महाराज की आज्ञा को ठीक ढंग से पालन किए थे बस। और नतीजा हुआ कि भगवान के आने के बाद भी वो नहीं जानते थे कि कौन है और इसके इससे कैसे बात करना चाहिए, इनके साथ हमारा क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं जानते थे। हक्का बक्का खड़े थे, कभी उनका पीताम्बर चूमते थे, कभी हाथ चूमते थे, पैर एकदम छोटा बच्चा। भगवान समझे कि मेरे मुझको समझ नहीं रहा है, तो भगवान अपने तरफ से वेद में शंख गाल में स्पर्श किया, ध्रुव जान गए। तो भगवान जनाते हैं तब हम जान जाते हैं। हमारा कर्तव्य है अपने गुरु की आज्ञा को ठीक ढंग से पालन करना बस। और वो दुर्लभ चीज है, भगवान को जानना दुर्लभ है, लेकिन उनकी प्रशंसा सब कर रहे हैं। ध्रुव महाराज के पितामह, उनके पितामह मनु महाराज कह रहे हैं कि बेटा तुम बचपन में इसको जान गया, जिसको जन्म जन्म लग जाता है उस प्रभु को तुमने निकट से देखा, स्पर्श किया, बात किया, और फिर आकर भाई के मुंह में पड़कर यक्षों का वध कर रहे हो, ये उल्टी स्थिति कैसे आ गई, ऐसा कैसे हो गया। कोई भी भक्तों का ये उदाहरण है, प्रायः पहले लोग गलत संस्कार में रहते हैं, भक्तों के संग में सुधरते हैं, आज तू पहले भगवान को प्राप्त करके फिर बिगड़ गया, हिंसा में लिप्त हो गया, ये आश्चर्य कर रहे हैं। और उसी तरह कुबेर जी भी कह रहे हैं कि बेटा तुमने जो दुर्गे है उस प्रभु को तुमने बचपन में जान गया, दुर्लभ सब लोग कह रहे हैं, लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या प्रयास किया जानने के लिए, हम प्रश्न करते हैं, कोई प्रयास नहीं किया। उसी प्रकार ये दुर्लभ अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाता है गुरु आज्ञा के ठीक से पालन करने पर, ये जो बहुनाम जन्मना मनते वाली स्थिति प्राप्त हो जाती है आसानी से, इसके लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए और निराश भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञान मान माम प्रपद्यते, ये बात चाहे मनुष्याणाम सहस्ते सुख कश्चित जति सिद्धये जतनाम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यति तत्त्वतः, निराश होकर माला झोली रख दी, हमारे पास की चीज है, ऐसा नहीं। ईश्वर महात्मा लोग एक कथा कहते हैं कि दो साधक थे, एक पीपल के पेड़ के यहाँ भजन करता था, एक इमली के पेड़ के यहाँ, देवर्षि नारद उधर से गुजरे, तो ये लोग उनको प्रणाम किए, कहे कि नारद जी आप भगवान से मिलते हैं, हमारे विषय में पूछिए ना, हमारा कब नंबर आएगा, हम कब उनका दर्शन करेंगे, उनका धाम पाएंगे। दोनों एक ही प्रश्न किए, दोनों दो जगह थे, तो नारद जी कहे ठीक है अब की बात पूछ कर आऊंगा। तो आए कुछ दिन के बाद, तो पीपल वो इमली के पेड़ वाला के पास गए, नहीं पीपल के पेड़ वाला के पास, तो कहे कि क्या कहे भगवान, भगवान कहे कि इस पेड़ में जितना पत्ता है उतना 100 वर्ष लगेगा तुमको भगवान को देखने में। बाप रे इतना टाइम लगेगा, तो कहे हाँ भगवान तो यही कहे, कि इस जीवन में तो संभव नहीं कई जन्म लग जाएगा, हाँ जितना भी लगे भगवान तो यही कहे। तो निराश हो गया एकदम। इसके बाद इमली के पेड़ के वाला के पास गए, तो कहे कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना 1000 वर्ष लगेगा, उसके लिए 100 कहे थे, जितना पत्ता है उतना 100 वर्ष और जितना पत्ता है उतना 1000 वर्ष इमली के पेड़ के यहाँ का। बस हमारे जैसे नीच को प्रभु स्वीकार कर लिए, एकदम नाच उठा खुशी में। हम अपनी नीचता को अपनी स्तर को बहुत कम समझकर स्वीकार नाचने लगा खुशी में, उसी क्षण भगवान आ गए, बस बस बेटा बस ये योग्यता।
अपना अजोग देखी मने पाऊ क्षोभ, तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लोभ। अपनी अयोग्यता है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं महाप्रभु से मिलते समय, कि अपनी अयोग्यता देखकर तो मन में बहुत क्षोभ हो रहा है कि मैं मुसलमान की नौकरी करता हूँ, गाय और ब्राह्मण से द्रोह करने वाला का नौकरी करता हूँ, दिन रात नीच कर्म में लगा हूँ, और लोभ हो रहा है कि मैं भी गौर परिकर हो जाऊं, मैं भी गौर कृष्णदास हो जाऊं। यह संभव है? नहीं संभव लग रहा है। लेकिन प्रभु आपके करुणामय व्यवहार को देखकर लोभ हो रहा है और आशा की किरण आ रही है कि आप मुझे स्वीकार करेंगे। तथापि तुम्हारे गुण उपजाए लोभ। आप पतित पावन है ऐसा मैंने सुना है, तो पतितों की लिस्टिंग की जाएगी तो मेरा नंबर अवश्य आ जाएगा। यह जब कहने लगे रूप गोस्वामी तो जानते हैं महाप्रभु का क्या कहे, बस बस ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे बोलने से हमारा छाती फट रहा है। तुरंत आलिंगन कर लिए और कह दिए आज है ते तुम्हार नाम रूप सनातन। उसी तरह दरवेश था, मुस्लिम वेश, एक माला जप नहीं करते, तिलक भी नहीं लगाए थे, कंठी भी नहीं बांधे थे, और महाप्रभु तुरंत कह दिए आज से तुम्हारी इनिशिएशन हो गई, आज है ते तुम्हार नाम रूप सनातन। तो अब देखिए जब अपने को व्यक्ति अयोग्य समझ कर भगवान की करुणा पर भरोसा करेगा तो निश्चित रूप से यह सौभाग्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा भारी प्रोसेस है, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो एक बार मैं मनुष्यानाम संस्कृत श्लोक का अर्थ किया था बहुत पहले किसी प्रीचिंग सेंटर पर, तो एक बूढ़ा भक्त कहे कि प्रभु जी हाथ जोड़कर कहता हूँ यह श्लोक कभी मत कहिएगा। मैं कहा क्यों? बाप रे बाप, इतना मंगला आरती जप ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, पता नहीं कौन करेगा, साधन करने वालों में भी हजारों हजारों में से कोई है, हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आएगा। तो मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं। तो कहना ये श्लोक मत कहिएगा। एक बार मैं अपीचे तो दुराचार श्लोक की व्याख्या कर रहा था तो एक भक्त आकर कहे नामाचार्य दास कहे कि देखो इस तरह की बात कभी मत कहना, हमारे उम्र में बड़े भाई थे, इस तरह की बात भूल कर मत समाज में कहना। नहीं आप समझे नहीं, दूसरा भाव है। तो कहने का मतलब कि निराशा की जरूरत नहीं है, एक आशा रहना चाहिए मन में, विश्वास रहना चाहिए, भगवान अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, ये जनरल सिद्धांत है कि भगवान रक्षक है, कोई दूसरा नहीं है। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि राम नियन हित दूसर नाही, होइबो करिहन तो ओइसर नाही। राम जैसा हितैषी कोई नहीं है, अगर होगा भी तो ऐसा तो नहीं हो सकता, होइबो करिहन तो ओइसर नाही। तो ये सिद्धांत है, लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण, ये सिद्धांत है, विश्वास पालन, इस विश्वास का पालन करना भक्ति हो जाएगा। हमारा विश्वास डिग जाता है भक्ति के अभाव में, आ जब हमको विश्वास है तो हमारी रक्षा अवश्य हो जाती है, हमारे को उत्साह मिलता है, वो तो रक्षा करेंगे ही, लेकिन इस सिद्धांत का विश्वास करना भक्ति है, अवश्य हमको कृष्ण स्वीकार करेंगे, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।